मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 22 दिसंबर 2016 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के सब्जेक्ट के रूप में मैंने सोचा है कि कल के ही विषय को आगे बढ़ाया जाए और कल हम निंदा के आनंद पर बात कर रहे थे। इसका कारण ये भी रहा फ्रेंड्स कि जब मैंने ईमेल देखे तो मुझे कोई बहुत नए विषय उसमें दिखाई नहीं दिए जो आप लोगों की तरफ से आए हों और उसे मैं आज टेकअप कर सकूं। लेकिन कल जिस इश्यू पर हमने बात की थी उसके बारे में कुछ प्रतिक्रियाएं थी जिसमें मुझे लगा कि कहीं न कहीं थोड़ी सी और बात करने की जरूरत है, इसीलिए वह टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए यह सोचकर मैंने कल वाले ही विषय को आज लेने के बारे में निर्णय लिया। तो मित्रों, कल के ही विषय को क्यों निंदा करने में मजा आता है, इसे ही हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की थी कि निंदा करने वालों को मजा आता है। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि सुनने वालों को क्यों मजा आता है। आप अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी की निंदा की जाती है तो जो सुनने वाला ग्रुप है वो चुपचाप उसको सुनता है। देखिए, हालांकि आलोचनात्मक बात हो रही है, निगेटिविटी आ रही है, नकारात्मक बातें हो रही हैं, लेकिन हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। हम तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि वह निंदा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न की जा रही हो जिसे हम बहुत चाहते हैं, जो हमारा क्लोज हो, हमारा मित्र हो, हमारे परिवार का सदस्य हो। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तब तो हम उसका प्रतिवाद करते हैं, उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन यदि बात सामान्य रूप में कही जा रही हो, जिस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हम खुद भी उसमें आनंद लेने लगते हैं, सुनने में आनंद आने लगता है। एक बात तो मैं यहां कहना चाहूंगा मित्रों कि भले ही मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यदि किसी की निंदा को सुन रहा हूं तो मुझे ये मानकर चलना चाहिए कि मैं भी उस निंदा में शामिल हूं। या तो मैं कुछ सवाल खड़े करूं, जो बात कह रहे हैं उनके प्रमाण मांगूं या उसके पीछे के तर्क मांगूं, लेकिन यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो सीधी सी बात है कि मुझे भी मजा आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो मेरा मजा है, ठीक है, मेरे कहने पर ही निर्भर नहीं कर रहा है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसमें शामिल नहीं हूं। और सुनने के बाद भी हमारी भावनाएं उसी तरीके से उत्तेजित होती हैं जिस तरीके से सोचने पर उत्तेजित होती हैं या बोलने पर उत्तेजित होती हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आप लोग थोड़ा सा इसे एक्सपेरिमेंट करके भी देखें, यह बहुत ही मजेदार प्रयोग होगा कि हमारे अंदर जब भी कोई भावना पैदा होती है, देखिए मजा आना तो एक भावना है ना, आपको मजा आ रहा है मतलब एक मजे की भावना पैदा हो रही है, या दिमाग में सेरोटोनिन नाम का कोई केमिकल पैदा हो रहा है, जो भी है इसको वैज्ञानिक रूप में कह लीजिए। लेकिन मजा तो तभी आता है जब भावना पैदा होती है। तो मित्रों, जो भावना हमारे अंदर पैदा होती है, थोड़ा सा आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, चाहे तो जैसे ही ये ऑडियो खत्म होता है आप तुरंत इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठे बैठे वहीं कर सकते हैं कि जब भी हमारे अंदर कोई भावना पैदा होती है तो क्या ठीक उससे पहले कोई विचार पैदा नहीं होता? आप महसूस करेंगे, अगर बड़ी सूक्ष्मता से देखेंगे, ध्यान देंगे, तो चाहे भावना कितनी भी लंबे वक्त, कितने भी लंबे वक्त के लिए क्यों न हो या कितने भी छोटे वक्त के लिए क्यों न हो, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई एक विचार, भले ही वो क्षण भर के लिए आए, आकर के खत्म हो जाए, लेकिन वो आएगा जरूर। यदि विचार पैदा नहीं होगा तो भावना आगे नहीं पैदा हो सकती, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं वे हमारे विचारों को फॉलो करती हैं। मैं कम से कम इस विचार को मानता हूं, हालांकि ये मेरा अपना विचार नहीं है, ये विलियम जेम्स एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, मैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूं, यानी कि विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं। तो जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तो याद रखिए कि हमारे अंदर एक विचार पैदा हो जाता है, और वो विचार इस बात को लेकर के होता है यार कि मैं उस जैसा नहीं हूं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि मैं उस जैसा गलत या बेकार नहीं हूं, बल्कि वो दिमाग फिर अपने आप आपकी पसंद के हिसाब से इस वाक्य को भी जोड़ देता है कि नहीं, मैं उससे बेहतर हूं, और जैसे ही हमारा दिमाग यह सिद्ध कर देता है कि मैं उससे बेहतर हूं, वो तारीफ हो जाती है। और इस तारीफ को का अनुभव कह लीजिए या इसका स्वाद कह लीजिए, वो हमें एक आनंद की स्थिति में पहुंचा देता है। मित्रों, ये सब कुछ इतने तेज रफ्तार से होता है हमारे अंदर कि पलक झपकते जैसे कि पूरा ब्रह्मांड सामने उतर आया हो, इसकी स्पीड का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप देखिए कि ये कहा जाता है सामान्य तौर पर कि एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 विचार पैदा होते हैं, 60,000, और इसमें कोई भी नया विचार नहीं होता, सब पहले के ही सुने सुनाए सोचे सोचाए उसी तरह के विचार होते हैं। लेकिन 60,000 थॉट्स इन ए डे, आप सोच के देखिए कि उनकी गति क्या है। तो दोस्तों, उससे हमारी भावनाएं पैदा होती हैं और भावनाएं फिर से हमें उस आनंद में डुबो देती हैं जिसे हम कहते हैं निंदा का आनंद। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी दूसरी बात पर आ रहा हूं। आनंद वाली बात तो यहां पूरी हुई, यहां हमें थोड़ा सा समझना होगा कि निंदा और समीक्षा में फर्क होता है। जिसे हम आलोचना कहते हैं, देखिए आलोचना शब्द है और सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में अक्सर इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है प्रश्न पूछने के दौरान। जो हम आम बोलचाल की भाषा में आलोचना करना कहते हैं कि भाई वो उसकी आलोचना कर रहा था, तो हम सामान्य रूप में यही लेते हैं कि वह उसकी निंदा कर रहा था। लेकिन जब इसको हम साहित्यिक शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, साहित्य में इस्तेमाल करते हैं आलोचना, तो इसका मतलब होता है कि आप उसका परीक्षण कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, यूं कह लीजिए कि उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो दैनिक जीवन में जो आलोचना होती है वो एक तरीके के निंदा के अर्थ में ली जाती है, लेकिन साहित्य कला में जो आलोचना शब्द का इस्तेमाल होता है वह परीक्षण के रूप में लिया जाता है। जब हम परीक्षण करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी खूबी मित्रों ये होती है कि हम दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं, मतलब उसके कृष्ण पक्ष को भी और उसके शुक्ल पक्ष को भी, यानी कि उसमें जो कमियां हैं उसको भी, लेकिन उसमें जो विशेषताएं हैं उसको भी, और इन दोनों को साथ में लेकर फिर हम उनका परीक्षण करते हैं कि ये क्यों हैं, कैसे हैं, ये है तो वो है, वो नहीं है तो ये है, और फिर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। भले ही फिर वो हमारा निष्कर्ष यही क्यों ना निकले कि वो बहुत बुरा आदमी था, ये बात अलग है, निष्कर्ष वही निकल रहा है कि वो बहुत बुरा आदमी था, जिसे अंततः आप एक निंदात्मक निष्कर्ष मानेंगे, निंदा ही हो रही है। लेकिन ये जो मेरा निष्कर्ष है ये टोटली मेरे अपने ही अवधारणाओं पर आधारित नहीं है, मेरी अपनी ही भावनाओं और विचारों पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें बहुत से लोगों के विचार, बहुत से लोगों की अवधारणाएं सब शामिल हैं, और मैंने भी किसी दूसरे के विचारों को ज्यों का त्यों नहीं ले लिया है, बल्कि उसे परखा है, उसे उलट पलट कर देखा है, तर्क की कसौटी पर उसे कसा है, और तर्क की कसौटी पर कसने के बाद जो मुझे लगा वह मैंने रख दिया है, जिसे हम कहते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन या आलोचनात्मक परीक्षण। तो दोस्तों, जहां तक इस तरह के आलोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षण की बात है, इसे हमें खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह एक तरीके से हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर की गलतियां हैं, जो हमारा दृष्टि दोष है, जो हमारे सोचने समझने की जो गलत दिशा है, उनको करेक्ट करता है। और जब तक हम अपनी गलतियों को करेक्ट नहीं करेंगे, याद रखिए कि कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए तो बहुत जरूरी है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन हो, लेकिन अगर कोई केवल निंदा कर रहा है या सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहा है, तो ये मान करके चलिए कि वो आपके चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा तैयार कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जा। यस, अगर वो निंदा है तो वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, आलोचनात्मक परीक्षण अगर हो रहा है तो वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, वो एक सकारात्मक ऊर्जा होगी। प्रशंसा में तो सकारात्मक ऊर्जा होती ही है, बशर्ते कि सुनने वाले को जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसको ये न लगे कि ये जानबूझकर झूठी प्रशंसा की जा रही है। अगर वो झूठी प्रशंसा की जा रही है तो याद रखिए, अगर सुनने वाले को ये महसूस हो गया कि जो प्रशंसा की जा रही है ये झूठी है, तो फिर उसकी सकारात्मकता खत्म हो जाएगी, वो ऊर्जा एक तरीके से नकारात्मक ऊर्जा ही हो जाएगी, जिसे आप चापलूसी कह लीजिए। लेकिन जहां तक निंदा की बात है, वो तो नकारात्मक ऊर्जा ही पैदा करती है, अगर वह झूठी है तो, गलत है तो। तो मित्रों, अगर ऐसी कोई भी जगह हो जहां आपको ये सब सुनने को और जानने को मिल रहा है, तो मैं दो तीन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अगर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, एक सकारात्मक हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मतलब उस निंदा को अगर आप बहस में नहीं बदल सकते, मतलब तर्कपूर्ण नहीं बना सकते, तो बेहतर है कि वहां से आप किनारे हो जाइए, क्योंकि उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। आप जबरदस्ती एक अपने बारे में खुश फहमी पाल लेंगे, जो हो सकता है कि आगे चल करके हम सबके लिए एक मीठा जहर की तरह साबित हो। और दूसरी बात कि अगर आप खुद किसी की निंदा कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो निंदा है वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए, एक संपूर्णता में होनी चाहिए। आप एक बहुत अच्छे कलाकार की, जो बहुत अच्छा कलाकार है, जो बहुत अच्छा समझ लीजिए कि शहनाई बजाता है, बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, आप इसी आधार पर निंदा नहीं कर सकते कि वो रात दोपहर में 12 बजे तो सोकर उठता है और रात भर जगता रहता है। बहुत लोग इसी आधार पर निंदा करते हैं कि वो क्या बांसुरी बजाएगा यार, वो 12 बजे तो सोकर उठता है, तो किस समय वो रियाज कर रहा होगा, तो फालतू की बात है। यह हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। हमें अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को निंदा का आधार नहीं बनाना चाहिए, उसे रियलिटी में देखना चाहिए, उसको सच्चाई की कसौटी पर कसना चाहिए। और याद रखिए कि सच्चाई तब तक आपको पता नहीं लगेगी जब तक आप उसे संपूर्णता में न देखें। अगर टुकड़े टुकड़े में काट करके देखेंगे तो आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो मित्रों, कोशिश कीजिए पहली बात कि निंदा सुनने का मौका न आए। अगर निंदा सुनने का मौका आता है तो हम उसे तर्क में तब्दील कर सकें, निंदा हम करने से बचें, और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने से बचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो तर्कपूर्ण हो, भावनात्मक न हो, सिर्फ हम तक ही सीमित न हो और हमारी सीमित जानकारी तक भी सीमित न हो, वो व्यापक हो, संपूर्णता में हो, ताकि उसका प्रभाव पड़ सके। और जब भी हमें किसी की प्रशंसा करने का मौका मिलता है तो वी शुड डू इट। हमें दूसरों की तारीफ करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का आभा मंडल तैयार करता है। और ये जो सकारात्मक ऊर्जा है, ये आप मत समझिएगा कि जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसी को ही मिलेगी, खुद आपको भी मिलेगी। आप कभी करके देख लीजिए, आप भी जब किसी की तारीफ करते हैं तो आपका दिल भी खुश होता है। ये नहीं कि केवल सुनने वाले का दिल खुश होता है, क्योंकि वो रिएक्शन में आपकी तारीफ करेगा या कुछ न कुछ तो आपके प्रति आभार व्यक्त करेगा ही, और वही आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।